मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 24 नवंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं रविंद्र कथाने, आप छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं, शिव शरण मौर्य, आप जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, कुंदन गांगुली, आप झारखंड से हैं, अखिलेश कुमार साहू, आप जांजगीर छत्तीसगढ़ से हैं, चंदन सिंह आजमगढ़ से हैं और शंकर लाल, आप बनारस आप हैं माधोपुर राजस्थान से हैं। तो रविंद्र, शिव शरण, कुंदन, अखिलेश, चंदन और शंकर, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत के इस क्रम के बाद अब हम लोग आते हैं आज न्यूज एनालिसिस पर। और न्यूज एनालिसिस के रूप में आज हमारे पास काफी टॉपिक्स हैं बातें करने के लिए और मजेदार बात यह कि वो न्यूज में भी हैं और न्यूज पेपर्स में भी हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है, उस सीमा के तहत देखते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा बातें लेकिन बहुत ही ठोस तरीके से की जा सकती हैं। दोस्तों, न्यूज में आपने दो तीन खबरें अलग अलग सुनी हैं, लेकिन उन्हें मैं एक जगह पर इकट्ठा करके आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। खासकर ये खबर है, ये टॉपिक है, खबर नहीं कहना, टॉपिक है जो हमारी जो एक्सिक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, जिसे हम कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं, उसके बीच के संबंधों को अभी फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है उनको देखने की कोशिश कीजिए, उनके संबंधों को जरा सा देखिए। तीन चार चीजें हैं जिसमें दो तीन बातों का जिक्र न्यूज में भी हुआ है। पहला तो आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं और इससे पहले न्यूज में भी आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने जो सरकार ने जो जिन न्यायाधीशों के नाम रिजेक्ट करके भेज दिए थे, जिनकी नियुक्ति आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ नाम सुझाता है और उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। तो उन्होंने 43 नाम वापस भेज दिए थे, उसमें से कुछ नाम अब कुछ छोड़ करके बाकी नाम फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पास भेज दिए हैं। ये एक बहस का मुद्दा बन गया है कि सरकार रिजेक्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट फिर से उसमें से कुछ नाम उसने ड्रॉप किए हैं, 6-7 नाम ड्रॉप भी किए हैं, फिर से सरकार को रिकमेंड कर रही है। तो यहां आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक वैचारिक मतभेद दिखाई देगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट जिन्हें योग्य मान रही है सरकार उन्हें योग्य नहीं मान रही है, और सरकार जिन्हें योग्य नहीं मान रही है सुप्रीम कोर्ट उन्हें अयोग्य मान रही है। सोच करके देखिए इसके प्रैक्टिकलिटी पर कि अगर सरकार ने कोई आपत्ति लगाई है तो ऐसे नहीं लगा दी होगी, कुछ ना कुछ तथ्य दिए होंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि वो तथ्य बाहर नहीं आ रहे हैं कि सरकार ने किस आधार पर आपत्ति लगाई, और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने नाम वापस भेज दिए हैं तो डेफिनेटली उन आपत्तियों का निराकरण करके भेजा होगा, तो पब्लिक वो निराकरण भी नहीं जान रही है, ये पहला रिलेशन है। दूसरी बात, आपने देखे तो कि नोटबंदी का भी जो मामला चल रहा है डिमोनेटाइजेशन का, और उसके बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं ना, वो जनहित याचिकाओं के तहत केस दायर किए जा रहे हैं, तो सरकार ने एक व्यावहारिक तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि भाई उन सबको सबकी सुनवाई एक ही जगह हो, अलग अलग सुनवाई का कोई मतलब नहीं क्योंकि मामला तो लगभग लगभग एक सा ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क है, तर्क दिया है उन्होंने, उनका तर्क ये है कि चूंकि अलग हर जगह की अपनी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, मतलब याचिका जो दायर की गई है उसके केंद्र में अलग अलग किस्म के मुद्दे हैं, कारण तो ठीक है नोटबंदी है लेकिन उससे जो परिणाम आ रहे हैं वो अलग अलग है, इसलिए उनकी सुनवाई अलग अलग होनी चाहिए, मतलब उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि सारे केसेस एक जगह लाए जाएं। ये एक दूसरी स्थिति है। इसकी व्यावहारिकता को आपको देखना है ना। तार्किकता तो ठीक है, अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय हित ही है। एक तो कानून की बात होती है और दूसरे व्यवहार की बात होती है। तो अब आपको देखना होगा कि इस मायने में सुप्रीम कोर्ट कितना कानून का पक्ष लेकर के चल रही है और कितना व्यवहार का पक्ष लेकर के चल रही है। जहां तक जनहित याचिका है, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जनहित याचिका एक तरीके से नेचुरल जस्टिस पर डिपेंड करती है, नेचुरल जस्टिस पर, वो लॉ कानून पर उतनी डिपेंड नहीं करती। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो ये आपको नोट भी कर लेना चाहिए कि वहां कानून उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि नेचुरल जस्टिस, जिसको हम न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत या नैसर्गिक सिद्धांत कहते हैं। सेकेंड पॉइंट। तीसरा, देखिए मित्रों, अभी लोकपाल को लेकर के आया, उसके बारे में न्यूज में भी बात थी कि लोकपाल विधेयक 2014 के शुरुआत में पारित हो चुका, संसद ने पारित कर एक्ट बन चुका है। अब लोकपाल की नियुक्ति होनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केंद्र अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर पाया है, 2 साल हो चुके हैं। इसके बारे में केंद्र का कहना यह है कि जो लोकपाल की नियुक्ति होने वाला जो समूह है, जो ग्रुप होगा, उसमें एक विपक्ष का नेता भी मेंबर होता है, और सरकार का कहना है कि चूंकि विपक्ष का भी कोई नेता ही नहीं है, सरकार ने, आपको मालूम है कि किसी भी पार्टी को विपक्ष की मान्यता नहीं दी है, क्योंकि विपक्ष दल के नेता का पद प्राप्त करने के लिए जो टोटल मेंबरशिप होती है उसकी 10% सीटें आपके पास होनी चाहिए। लोकसभा में 542 सदस्य हैं, 540 मान लीजिए मोटे तौर पर, तो कम से कम 54 मेंबर आपके होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में और उसके पास सिर्फ 44 हैं, तो इसीलिए कोई विपक्ष दल का नेता नहीं है। ये सरकार ने प्ली लिया कि चूंकि विपक्ष दल का कोई नेता नहीं है इसलिए हमने अभी तक अपॉइंट नहीं किया है, और अब उन्होंने एक इस तरह का विधेयक संसद में पेश किया हुआ है जिसमें इस क्लॉज को हटाकर कि विपक्ष दल का नेता ही हो, इसको हटाकर के वो दूसरा मेंबर डालना चाह रहे हैं जो इसी के आसपास हो। इससे न्यायालय ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त की है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या लोकपाल विधेयक ही खत्म हो जाएगा। अखबारों में यह भी लिखा हुआ है कि और भी दूसरी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिसमें विपक्ष का नेता होना चाहिए लेकिन विपक्ष का नेता न होने के बावजूद भी नियुक्तियां हुई हैं, जैसे विजिलेंस कमिश्नर की, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, इस तरह के 2-3 पदों के उदाहरण दिए गए हैं, आपको अखबार में वो मिल जाएंगे। तो ये तीसरा कारण है, ये 3 तथ्य ये आपको अभी अभी दिखाई दे रहे हैं जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कहीं ना कहीं तनाव को तो व्यक्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने तरह से स्टैंड ले रही है और वो तो संविधान से परे बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। अब सवाल यह है कि वो जो संविधान की जो व्याख्या करेगी वो किस तरीके से कर रही है। देखिए, एक ही चीज की व्याख्या आप 2 तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिजिड रूल्स रेगुलेशन के आधार पर, दूसरा यह है कि उससे उसके व्यावहारिकता को देखते हुए। जैसे नोटबंदी के मामले में डेफिनेटली उन्होंने जो तर्क दिया है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी तरह से देखें तो जो रीजन है वो नोटबंदी है, तो उसको एक जगह भी किया जा सकता था। अब अलग अलग जगह पर अगर उसकी व्यावहारिकता को देखें तो अलग अलग जगह पर उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद फिर अलग अलग तरह के डिसीजंस आएंगे, कंट्राडिक्टरी डिसीजंस भी होंगे, कहीं टर्न डाउन होंगे, कहीं कुछ ही होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो व्यावहारिकता के स्तर पर वो परेशानी भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो बिल्कुल सही है। तो खासकर जो टकराव है वो इसी तरह की चीजों का है कि सरकार को सपोर्ट या मजबूत बनाने या व्यावहारिक कदम उठाने के पक्ष में है या स्ट्रिक्टली जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करने के पक्ष में है। तो दोस्तों, यहीं पर बात आती है जुडिशियल एक्टिविज्म की, न्यायिक सक्रियता जिसे आप कहते हैं, जो सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड, चूंकि यहां अब लोकपाल की बात उठ चुकी है, लोकपाल की नियुक्ति को लेकर के, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए और यहां तक कि आपके प्री एग्जाम के लिए ये लोकपाल भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक अब हो गया है। और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसके सेकेंड पेपर में लोकपाल पर बकायदे एक क्वेश्चन आया भी है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, और मुझे लगता है कि ये कैपेसिटी आप लोगों में होना भी चाहिए, मैंने कहा 2013 में, यानी कि 2013 के दिसंबर फर्स्ट वीक में जो पेपर आया उसमें लोकपाल की चर्चा थी, और मैंने कहा कि 2014 में ये एक्ट जनवरी में पारित हो गया, अगर जनवरी में एक्ट पारित हुआ है, इसका मतलब है कि उसे 3-4 महीने पहले वो संसद में आ चुका होगा। और अगर वो एक्ट, वो विधेयक बिल अगर संसद में आया है तो बट नेचुरली कि संसद में उस पर बहस भी हुई होगी। किस पर? लोकपाल विधेयक पर। तो अब आप देखिए कि लोकपाल विधेयक पर चूंकि बहस हुई है तो इसीलिए लोकपाल पर एक क्वेश्चन आ गया। तो करंट अफेयर्स को आपको इस तरीके से एनालाइज करना होगा, या आपको जो आपके पास जो अनसॉल्व्ड पेपर है उस पर उसको इस दृष्टि से देखना होगा कि ये करंट अफेयर्स से कैसे जुड़ा हुआ है। मित्रों, 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है लोकपाल पर, आप देखिए कि वो है क्या, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, विवेचना कीजिए। दो शब्दों में, इंग्लिश में, ये नेशनल लोकपाल हाउ एवर स्ट्रांग इट मे बी कांट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स, डिस्कस 200 वर्ड्स, 10 मार्क्स का। अब आप देखिए, विधेयक पेश किया गया, राष्ट्रीय लोकपाल विधेयक पेश किया गया। वो यही कह रहे हैं कि आप कितना भी अच्छा लोकपाल विधेयक लेकर के आ जाइए, लोकपाल नियुक्त भी कर दीजिए, लेकिन जो अनैतिकता की समस्या उसको लोकपाल कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी समस्या है, वो तो अलग तरीके की। तो आप देखिए कि किस तरह का बड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो जो विधेयक पेश किया गया था उस विधेयक को आधार बनाकर यहां आ गया है। इसके बाद बीच के 2 साल में आपके 2014-2015 में लोकपाल पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, 2016 में अब आने पर पता लगेगा, चूंकि फिर से लोकपाल का मुद्दा अब उठा है और डेफिनेटली इस पर अब सरकार कोई स्टेप भी लेगी। हो सकता है कि अभी जो शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है इसमें वो विधेयक पारित ही हो जाए, फिर लोकपाल की नियुक्ति हो जाएगी, और अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर से लोकपाल का जो टॉपिक है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। मित्रों, अब जो दूसरी खबर है वो है, आपने न्यूज में सुना नाबार्ड का नाम, आपने सुना नाबार्ड बैंक है जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, जबकि इंग्लिश में इसका नाम है, इंग्लिश में थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत होती है। नाबार्ड में लगता है ना नेशनल एग्रीकल्चर ए है, लेकिन वो दूसरे तरीके से है, आपको इसको देखना होगा। नेशनल बैंक फॉर, एन ए के बाद सीधे आप बी पर आ जाइए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। 21,000 करोड़ रुपए अभी खासकर रबी फसल की जो बुआई होनी है इन सब के लिए, किसानों के लिए इन्होंने सैंक्शन किए हैं। तो मित्रों, डेफिनेटली आपको नाबार्ड बैंक के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि यह नाबार्ड बैंक क्या है। कुछ बातें आपको मैं छोटी छोटी बातें बता दूं कि खासकर कृषि और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, बी शिवरामन समिति। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट देने के बाद 1981 में एक एक्ट संसद में प्रस्तुत किया गया और फिर 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई उस एक्ट के तहत ही, 1982 में। और याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, क्योंकि ज्यादातर हेडक्वार्टर के बारे में हमारे दिमाग में यही बात आती है कि वो दिल्ली में होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके बाद फिर इसकी बहुत सी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई है। मित्रों, इसका जो उद्देश्य है नाबार्ड का, इसके शीर्षक में ही वो उद्देश्य रिफ्लेक्ट हो रहा है कि खासकर खेती और ग्रामीण विकास, इससे संबंधित जो योजनाएं हो सकती हैं, जो नीतियां हो सकती हैं, और खासकर इन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कर्ज या धन की जो समस्या हो सकती है, जिसे आप क्रेडिट कह सकते हैं, और जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं खासकर ग्रामीण भारत में, उन सब के लिए एक तरीके से यूं कह लीजिए कि सुविधा और धन मुहैया कराना, ये पूरी तरह से 100% रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को समर्पित है, या यूं कह लीजिए कि ये स्पेसिफिक बैंक है, ये कॉमन बैंक नहीं है कि वहां से जाकर आप किसी भी काम के लिए पैसा ले लें, ये स्पेसिफिक बैंक है जो केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट देती है। तो आपको इसके बारे में मुझे लगता है कि कुछ जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, इस पर एक छोटा सा नोट आपको किताबों में मिल जाएगा, उसे पढ़ लेना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में इसे सेलेक्ट कर लेना चाहिए। प्री के लिए तो मुझे महत्वपूर्ण लगता भी है। मित्रों, न्यूज से बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर में फ्रेंड्स आज काफी क्लिपिंग्स हैं और आप सब पर ध्यान दीजिएगा। एक क्लिपिंग्स मैं आपको, जैसा कि मैंने अभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की, तो इसको इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। एक नया टॉपिक फ्रेंड्स जो न्यूज में नहीं है, मैं आपका ध्यान उस पर उस तरफ से दिलाना चाहूंगा, वो है TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यह एक संधि है। इसका इसमें 12 देश हैं दुनिया के, 12 देश हैं, वो देश हैं जो पैसिफिक, जो प्रशांत महासागर है उसके आसपास हैं। नो डाउट कि इसमें अमेरिका है, इसमें जापान है, इसमें कनाडा भी है, ये देश इसके मेंबर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक इंटरव्यू में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो इस ट्रीटी को खत्म करेंगे, TTP को खत्म कर देंगे, उससे अपने को बाहर ले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन उनका है। और दोस्तों, चूंकि भारत का इससे संबंध है, इसलिए ये TTP के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी प्रशांत सागर से संबंधित चाइना भी है। अगर आप थोड़े लंबे समय से इस डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे तो देखा है आपने बैलेंस ऑफ पावर को लेकर के, और साउथ चाइना सी में किस प्रकार से चाइना अपनी दादागिरी बढ़ाता चला जा रहा है, यहां तक कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की बात को भी वो रिजेक्ट कर रहा है। आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं इससे बहुत परेशान हैं। भारत के साथ भी एक तनाव की स्थिति आ गई है साउथ चाइना सी में उसके बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर। तो ये जो पैसिफिक जो ओशन में ये जो ट्रीटी है, अगर ये खत्म होगा तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेकर के एक कमेंट किया है, एडिटोरियल कमेंट किया है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट किया है, वो भी प्रोवाइड कर रहा हूं। और इसके साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस ने एक बकायदे आर्टिकल लिखा है, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इन तीनों में जो आपकी दृष्टि होगी वो दो दृष्टि होनी चाहिए। पहला यह है कि इससे अगर ट्रंप अपने को वहां से बाहर कर लेते हैं तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरा किस तरीके से जो शक्ति संतुलन है जो खासकर चाइना की वजह से होगा वो किस तरह से फेवरेबल होगा, या भारत इस स्थिति का कैसे एक डिप्लोमेटिक बेनिफिट ले सकता है। इस दृष्टि से आप इन आर्टिकल्स को पढ़िएगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त और दूसरे बहुत से आर्टिकल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, अब उनके बारे में बताने का वक्त नहीं है, आप सब देख लेंगे और मुझे लगता है कि अब आप इतने मैच्योर हो भी चुके हैं कि आप इन्हें समझ भी लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और इनमें से कुछ मित्रों के नाम है, मोहित वर्मा चूरू राजस्थान से, देव किशन गुर्जर, कृष्ण कुमार, आकाश राज, कैलाश सैनी, शुभम टोपनवार, गौरव शर्मा विदिशा से, निहारिका चौधरी और धनंजय त्रिपाठी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।